पृष्ठ संख्या 101। शुल्क पद्धति तथा कानून संबंधी परिवर्तन। विदेशी राष्ट्रों के साथ संपन्न संधियों द्वारा जापान के न्यायिक व आर्थिक अधिकारों के छिन जाने के कारण जापान में संधियों के संशोधन के लिए आंदोलन होने लगा। जब जापान ने विदेशियों के साथ संधियां तय की थी, उस समय जापान में कानून की अवस्था लगभग वैसी ही थी जैसी सामंत युग में थी। इसलिए विदेशियों ने अपने नागरिकों को वहां के कानून अथवा स्थानीय न्यायालयों को के अधीन छोड़ना उचित न समझा। पश्चिम के प्रत्येक राष्ट्र ने किसी न किसी तरह जापान सरकार से यह मनवा लिया कि जिन मामलों में उसके नागरिक या प्रजाप्रतिवादी हो, वे सभी मामले उसके देश के कानून के अधीन उस देश के वाणिज्य दूतावास द्वारा सुने जाएं। विदेशियों को कुछ विशिष्ट संधि बंदरगाहों में ही रहने की इजाज़त थी, जहां कहीं भी पश्चिमी राष्ट्रों का ईसाई धर्मेतर राज्यों के साथ संधि द्वारा स्वीकृत संबंध था। वहां अपरदेशीयता के अधिकार को स्वीकार किया जाता था। इस अधिकार का प्रयोग चीन तथा तुर्की में भी किया जाता था। चीन की ही तरह यहाँ भी शुल्क व्यवस्था केवल औपचारिक समझौते की ही बात थी, अन्यथा समय समय पर उनमें परिवर्तन किए जा सकते थे। जापान के लोगों ने अपरदेशीयता तथा शुल्क व्यवस्था पर अपने नियंत्रण के परित्याग को हीनता का सूचक समझा। जापान के लोगों की देशभक्ति की भावना इस अपमान को स्वेच्छा से सहन नहीं कर सकती थी। इसके अलावा अपरदेशीयता के अधिकार के कारण प्रायः जब कभी कोई विदेशी किसी जापानी नागरिक के प्रति कोई अपराध करता तो उसे किसी प्रकार की सजा नहीं दी जाती थी। अधिकांश वाणिज्य दूतावासों के न्यायालयों की प्रबंध व्यवस्था असंतोषजनक थी, जिनमें विशेष रूप से छोटे छोटे देशों के न्यायालय सम्मिलित थे। जापान को राजस्व की बहुत अधिक आवश्यकता थी, और इसलिए शुल्क द्वारा राजस्व प्राप्ति के इस अधिकार का छिन जाना उन्हें बहुत अखड़ा, जो संधि के संशोधन के लिए एक और कारण था। पुनः स्थापना काल की सरकार का प्रथम कार्य इन प्रतिबंधों को हटाना था, और इसलिए सन 1871 में जापान ने इसके लिए एक प्रतिनिधि मंडल यूरोप तथा अमेरिका भेजा। एक ईसाई मतावलंबी राष्ट्र द्वारा किसी इतर धर्मावलंबी राष्ट्र को कभी ऐसी रियायत नहीं दी गई थी, और चूंकि अभी जापान के कानून तथा न्यायालयों का पुनर्गठन नहीं हुआ था, इसलिए इस प्रतिनिधिमंडल के रवाना होने से पूर्व ही उसकी असफलता लगभग निश्चित सी थी। इस आंदोलन का अभी श्री गणेश ही हुआ था। सन 1878 में अमेरिका जापान की इच्छानुसार उसके साथ संधि समझौता करने को तैयार हो गया, परंतु संधि तब तक लागू नहीं समझी जा सकती थी जब तक अन्य राष्ट्र भी ऐसी ही रियायतें न प्रदान। यूरोप इसके लिए तैयार न था। इसके बाद जापान के विदेश विभाग ने टोक्यो स्थित विदेशी प्रतिनिधियों के साथ सम्मेलन किए। इनमें से दो सम्मेलनों का आयोजन क्रमशः 1882 और 1886 में किया गया, पर ये दोनों ही असफल रहे। पश्चिमी देश अभी भी जापान को इस योग्य नहीं समझते थे कि उनके हाथ में विदेशी नागरिकों की जान व माल की सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी जा सके। इसी बीच जापान की प्रबुद्ध जनता ने भी इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1880 के एक साल बाद से ही जापान तथा समाचार पत्रों ने भी शुल्क पद्धति के नियंत्रण तथा अपरदेशीयता के अधिकारों के उन्मूलन की मांग की, ढुलमुल तरीके से समस्या के समाधान की भर्त्सना की। 1886 में हुए पश्चिमी देशों के प्रतिनिधियों के सम्मेलन में एक समझौता किया गया, जिसका वहां की सरकार ने भी समर्थन किया। इसके अनुसार अगर ऐसे सभी मामले जिनमें पश्चिमी देशों के नागरिक अपराधी हो, ऐसे न्यायालयों के सुपुर्द किया जाए जिनमें विदेशी न्यायाधीश नियुक्त हो, तो जापान के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में विदेशियों को भी सम्मिलित किया जा सकता था। लेकिन इस रियायत को जापानी जनता सहन करने को तैयार न थी। संधि संशोधन की मांग के साथ साथ राष्ट्रीय संस्थाओं को पाश्चात्य आदर्शों के अनुरूप बनाने का भरसक प्रयत्न भी जारी रहा, ताकि भेदभाव का कोई आधार न रहे। यूरोप में प्रचलित रीति रिवाजों तथा वेशभूषा का अनुकरण किया गया। नवीन शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। पाश्चात्य देशों के नमूने पर कानून की रचना को प्रोत्साहित किया गया। पश्चिमी देशों के ढंग पर नई व्यवहार संहिता का संकलन किया गया। जर्मनी की तरह वाणिज्य नियमों का निर्माण किया गया तथा फ्रांस में प्रचलित दंड विधान के नमूने पर दंड विधान का सृजन किया गया। न्यायाधीश के पद के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों को जीवन पर्यंत अथवा जब तक उनका आचरण अच्छा रहे नियुक्त किया जाता था। सन 1890 में राजा ने विधि संहिता को अंतिम स्वीकृति प्रदान की। अपर देशीयता के अधिकार का तर्कसंगत आधार बड़ी शीघ्रता से समाप्त होता जा रहा था और न्याय को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी देशों के लिए इसे और अधिक समय तक कायम रखना संभव न था। और 1888 में मेक्सिको ने जापान को न्यायिक नियंत्रण प्रदान करने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए। बहुत समय से यह ज्ञात था कि यूरोप के अन्य प्रमुख देशों के ऐसा करते ही संयुक्त राज्य अमेरिका भी इसी प्रकार का कदम उठाएगा। डाइट का अवर सदन मंत्रिमंडल के समझौते की बातचीत को आगे बढ़ाने का आग्रह कर रहा था। सरकार ने इस प्रश्न के बारे में सीधे यूरोप के देशों की राजधानियों के साथ बातचीत की। अंततोगत्वा 1894 में ब्रिटेन ने, जिसका व्यापार जापान में अन्य देशों की अपेक्षा अधिक था और जिसके नागरिकों की संख्या जापान में यूरोप के अन्य देशों के नागरिकों की अपेक्षा अधिक थी तथा जो किसी भी अन्य पश्चिमी देशों की अपेक्षा परिवर्तन का अधिक विरोधी था, जापान की इच्छा के अनुसार संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन के इस कार्य का अमेरिका ने भी अनुसरण किया। अगले 3 वर्ष की अवधि में अन्य विदेशी राष्ट्रों ने भी इनका अनुकरण किया। जापान ने देश के पुनर्गठन को इतने प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित किया कि इस कार्य में अब और अधिक देर करना उन पर अन्याय होगा। सन 1899 में जापान में अपर देशीयता के अधिकार का अंत हो गया। वाणिज्यिक न्यायालयों और विदेशी उपनिवेशों का उन्मूलन कर दिया गया तथा अब पश्चिमी देशों के नागरिक भी जापान के न्यायालय और कानून के अधीन आ गए। 1899 तक कुछ सीमा तक शुल्क पत्ती की दृष्टि से स्वायत्तता अथवा आत्मनियंत्रण पुनः स्थापित कर लिया गया। यद्यपि पूर्ण रूपेण इस अधिकार का प्रयोग एक दशक के बाद 1911 तक नहीं किया जा सका। इतिहास में प्रथम बार एक एशियाई देश को पश्चिमी देशों ने पूर्णतः समानता के आधार पर अपने समकक्ष स्वीकार किया। जापानियों की देशभक्ति की भावना और उनकी योग्यता की यह एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। पेरी के आगमन और 1894 के बीच की अवधि की सबसे प्रमुख विशेषताएं जापान की राजनीतिक पुनर्गठन तथा उसकी नवीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा थी। राज्य की संरचना, नीति एवं स्थिति में होने वाले परिवर्तन तो राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में घटित हो रहे रूप परिवर्तन का एक अंश मात्र थे। जापान पर पश्चिमी प्रभाव उसके वाणिज्य, अर्थव्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, उद्योग, वेशभूषा, चिंतन, शिक्षा तथा धर्म के क्षेत्रों में क्रांति ला रहा था और इनमें से कुछ क्षेत्रों पर यह पाश्चात्य प्रभाव 1000 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म व चीनी संस्कृति द्वारा डाले गए प्रभाव से भी अधिक व्यापक था। आरंभिक संक्रांति काल की भांति इस बार भी सरकार ने जनता का मार्गदर्शन किया और जनता ने यथासमय पूरे उत्साह के साथ सरकार का अनुसरण किया। आर्थिक पुनर्गठन। पेरी संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद जापान में वाणिज्य का तेजी से विकास हुआ, परंतु जापान में कई वर्ष के पश्चात ही वाणिज्य अपने विकास की पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचा। राष्ट्र का इतने अधिक समय से बाह्य जगत के साथ कोई संपर्क न था, इसलिए विदेशी माल के लिए मांग पैदा करने तथा खरीदे हुए माल की कीमत अदा करने में समर्थ होने में कुछ समय लगा। सन 1881 तक व्यापार का संतुलन जापान के प्रतिकूल था और उसकी पर्याप्त मुद्रा देश से बाहर निकल चुकी थी। 1887 के बाद वाणिज्य का और अधिक तेजी से विकास हुआ, जिसका श्रेय आंशिक रूप से सरकार के सक्रिय निरीक्षण तथा अंशतः देश के उद्योग के आंतरिक पुनर्गठन को है। वाणिज्य के क्षेत्र में सर्वाधिक समृद्धि का काल चीन के साथ युद्ध के बाद आया। विकास के आरंभिक वर्षों में इस नए वाणिज्य पर अधिकांशतः विदेशी दलालों का नियंत्रण था। यही लोग पहले जापान आए, वहां के स्थानीय व्यापारियों से इन्होंने माल खरीदा और इनका दूसरे देशों को निर्यात किया। ये दलाल सामान्यतः पश्चिमी देशों के सही प्रतिनिधि नहीं थे। जिन व्यक्तियों ने विदेशियों का साथ दिया था, उन्होंने स्वार्थ की सिद्धि के लिए नवोदित जापान का उपयोग किया। जापान के लोग विदेशी वाणिज्य से अपरिचित थे तथा उन्हें इससे परिचित होने और उपयुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए समय की आवश्यकता थी। इसमें सरकार ने भी सहायता करने का प्रयत्न किया, लेकिन आरंभिक दिनों में जापान के अनेक व्यापारियों ने विदेशियों के साथ व्यवहार में अपने ही तरीके का इस्तेमाल किया, जिससे व्यापार के क्षेत्र में जापान की बेईमानी की कहानियां सर्वत्र प्रचलित हो गई। यद्यपि आगे चलकर अवस्था सुधर गई, लेकिन फिर भी ये कहानियां प्रचलित रही, क्योंकि इनका कुछ न कुछ आधार अवश्य था। कहने में कोई हर्ज तो नहीं था, लेकिन इससे आम विदेशियों के मन में जापानी व्यापारियों के संबंध में यह धारणा बन गई कि जापान के व्यापारी विश्वसनीय नहीं है। वाणिज्य के विकास के साथ साथ बैंकों का उद्भव स्वाभाविक ही था। पहले तो सरकार ने विभिन्न तरीकों को परीक्षण करके देखा और 1873 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नमूने पर एक राष्ट्रीय बैंक व्यवस्था की स्थापना की। देश की धातु मुद्रा देश से बाहर जा रही थी तथा बैंकों और राजकोष की दशा दयनीय थी। सन 1881 में जापान ने एक बड़े केंद्रीय संस्थान की स्थापना की, जिसे आगे चलकर जापान बैंक कहा गया और बाद में व्यापार और विदेशी मुद्रा विनिमय के कार्य में सहायता के लिए एक उप संस्थान की स्थापना की गई, जिसे योकोहामा स्पेशी बैंक कहा गया। इसकी सहायता से सरकार ने कुछ काल के लिए विदेशों के साथ होने वाले राष्ट्रीय वाणिज्य को अपने हाथ में ले लिया और एक सुनियोजित योजना द्वारा सोने और चांदी का संचय किया तथा सोने और चांदी द्वारा अदायगी को संभव बनाया। डाकखानों में बचत बैंक योजना आरंभ की गई। 1900 से पूर्व ही इस व्यवस्था ने अंतिम रूप ग्रहण कर लिया था, जिसकी प्रमुख विशेषताएं आगे तक भी सुरक्षित रही, अर्थात एकमात्र राष्ट्रीय जापान बैंक को ही नोट छापने का अधिकार था और इसी में निजी और संयुक्त पूंजी वाले व्यापार संस्थाएं निहित थी। 1894 के बाद कृषकों एवं निर्माताओं की सहायता के लिए कृषि संबंधी एवं औद्योगिक बैंक भी चालू कर दिए गए। राष्ट्रीय जीवन के अधिकांश पक्षों की तरह सभी निजी वित्तीय संस्थान भी वहां के कानूनों तथा राज्य पर्यवेक्षण द्वारा नियंत्रित होते थे। वाणिज्य के विकास के साथ साथ परिवहन के साधनों में भी सुधार हुआ। जापान के समुद्र तट पर जहाजों की संख्या बढ़ गई। इनमें से अधिकांश जलपोतों का निर्माण पहले पहल दूसरे देशों में हुआ और ये उन्हीं देशों की संपत्ति थे। शीघ्र ही जापान में भी इनका निर्माण होने लगा और इन पर जापान का ही अधिकार था। इस क्षेत्र में भी सरकार ने काफी प्रोत्साहन दिया तथा सरकार की भारी आर्थिक सहायता से स्थापित कंपनियों ने आगे चलकर देशीय तथा विदेशी नौपरिवहन के क्षेत्र में 20वीं शताब्दी में जो जबरदस्त तरक्की की, उसके लिए दृढ़ आधार का निर्माण किया। रेलों के निर्माण में भी सरकार ने ही पहल की, यहाँ तक कि अनुदार वर्ग के विरोध के बावजूद टोक्यो और इसके बंदरगाह योकोहामा के बीच रेल मार्ग के निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। सन 1872 में सम्राट ने उसका विधिवत उद्घाटन किया। राज्य सरकार द्वारा रेलों के निर्माण के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाता रहा और अधिकांश आरंभिक रेलों का निर्माण राज्य सरकार अथवा सरकार से सहायता प्राप्त कंपनियों द्वारा किया गया। आगे चलकर निजी कंपनियों द्वारा अधिकृत रेल मार्गों का आधिक्य हो गया, परंतु जैसा कि हम आगे देखेंगे, हाल ही के कुछ वर्षों में इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। राज्य ने तार व्यवस्था का भी निर्माण किया और 1886 में इसे एक संयुक्त विभाग के अधीन डाक सेवा के साथ मिला दिया। 1877 में टेलीफोन व्यवस्था की भी शुरुआत की गई। औद्योगिक क्षेत्र में भी राज्य का महत्वपूर्ण हाथ रहा था। अनेक कारखानों पर उसका प्रत्यक्ष स्वामित्व था। सन 1890 तक जापान में 200 से भी अधिक वाष्प चालित कारखाने थे और अब पुरानी दस्तकारी का स्थान औद्योगिक क्रांति द्वारा विकसित नए तरीके लेते जा रहा था। लेकिन फिर भी राष्ट्र के औद्योगिक विकास की पराकाष्ठा चीनी युद्ध के बाद ही पहुंचा पाई। कृषि कृषि के क्षेत्र में सुधार की दिशा में भी सरकार ने ही पहल की। मेजी की पुनः स्थापना काल के बाद कृषकों को ही उस भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया जिस पर वे प्राचीन शासन काल में सामंतों के लिए खेती किया करते थे। बेगारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया तथा भूमि से प्राप्त अनाज आदि द्वारा अदायगी के बदले कर के रूप में नगदी द्वारा अदायगी की जाने लगी। किसानों द्वारा प्रयुक्त युगों प्राचीन कृषि के तरीकों के स्थान पर सुधरे हुए नए तरीकों का प्रचलन करने के लिए पश्चिमी देशों के कृषि विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की गई तथा कृषि के लिए पशुओं और घोड़ों की नई नस्ल का प्रयोग किया गया। बैंक व्यवस्था, वाणिज्य, परिवहन व्यवस्था, उद्योग तथा कृषि के पुनर्गठन में सुधारकों के निर्देशानुसार राज्य ने प्रमुख भाग लिया। इसके दो कारण थे। एक तो राज्य ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसके पास औद्योगिकृत पश्चिमी देशों के साथ सफलतापूर्वक होड़ कर सकने के लिए किसी बड़े कार्य को बड़े पैमाने पर चलाने के लिए अपेक्षित संगठन, पूंजी तथा साख थी। पैड़ी के आगमन से पूर्व देश में बहुत ही कम वाणिज्यिक संपदा थी तथा समस्त पूंजी भूमि में निहित थी। उद्योग तथा व्यापार अभी अपरिष्कृत अवस्था में ही थे और पश्चिमी देशों के मुकाबले में टिकने में असमर्थ थे। राज्य के सक्रिय योगदान का दूसरा कारण तोकुगावा शोगुनों द्वारा राज्य के महत्व को प्रोत्साहित करना था, क्योंकि वे राष्ट्र के संपूर्ण जीवन पर अपनी निगरानी रखना चाहते थे। पुनः स्थापना काल के मंत्रियों के लिए अतीतकालीन दृष्टांतों एवं परंपराओं का अनुसरण करना स्वाभाविक ही था।